नमस्कार, आप सभी के चहेते कार्यक्रम मार्गदर्शन में मोना देसाई का सादर वंदन। आज हम सभी के बीच कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, जो फिजिकली चैलेंज हैं, लेकिन इस एक शारीरिक कमी के रहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इनका जीवन, जीवन में जितने भी रंग इनके आए हैं, कितने ही उतार चढ़ाव इन्होंने अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन एक सामान्य जन जीवन की तरह इन्होंने उसको जीने का प्रयास किया है। आज हमारे बीच इन व्यक्तित्व का, इन व्यक्तियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये व्यक्ति जिन्होंने सामान्य जन जीवन जीते जीते कुछ परेशानियों का, कुछ उलझनों का, कई तरह की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है, और उन्हीं प्रश्नों से घिरे हुए कुछ उलझनों को लेकर आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, और इस मार्गदर्शन कार्यक्रम में इनके प्रश्नों के मार्गदर्शन के लिए, इनके प्रश्नों के जवाब के लिए हमारे पास यहाँ पर उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा रानी दीदी जी। दीदी, आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दीदी, हमारे बीच आज जो जीवन जीने की कला हमें सिखा गए हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं जो कई ऊंचे पदों पर, कोई एडवोकेट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन फिर भी इन्हें अपने पारिवारिक और सामाजिक डे टू डे लाइफ में कहीं न कहीं कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, और उन्हीं प्रश्नों का जवाब वो आपसे आज चाहने की उम्मीद से यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगी जयसिंह जी चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना जीवन इन विकलांगों की सेवा के लिए लगा दिया है, और उन्हीं के प्रश्न का मैं स्वागत करती हूँ।
नमस्कार दीदी जी, हम जयसिंह चौहान, जैसा विकलांगों का अगर कोई कार्य नहीं होता है, जिससे हमारी वजह से जो कार्य नहीं होता है और हमारा मन चलता है, तो इसे आप आध्यात्मिक रूप से हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं।
राजा जनक का आप सबने नाम सुना हुआ है। राजा जनक के साथ साथ दूसरा किसका नाम लिया जाता है मालूम है? किसका लिया जाता है? किसका बोलिए? अष्टावक्र का। जिसके शरीर के अंदर आठ मोड़ थे, उसकी एक कहानी है कि जब राजा जनक ने कहा कोई मेरा मन वश करा दे, उस समय बहुत बड़े बड़े विद्वान, शास्त्र जानने वाले सब पहुंचे। एक के बाद एक ने प्रयास किया राजा जनक के मन को वश करने का, पर एक नहीं कर सका। उसके बाद अष्टावक्र जी वहां पहुंचे तो जैसे पहुंचे तो वह बाकी विद्वान बैठे हुए थे तो सब हंस पड़े, क्योंकि इनके मन में एक सूक्ष्म आ गया कि हम इतने बड़े पढ़े लिखे विद्वान, हम उनका मनवश नहीं करा सके। ये जो शरीरक से भी विकलांग है, अष्टवक्र निकले हुए हैं, वो राजा का क्या मनवश में कराएगा? तो उसने राजा को कहा, राजन, मैंने सोचा था यह विद्वानों के सभा है, परंतु यहां तो सब चमार बैठे हैं। तो उनके मंत्री को थोड़ा सा गुस्सा आया, उसने कहा ये क्या कह रहे हो? तो कहा जो चमड़ी को देखता है वो चमारी होता है। एक इस बात ने राजा जनक में होप पैदा कर दी। राजा जनक ने कहा मार्ग बताइए, तो उसने वहां से प्रयास शुरू कर दिया और कहा मेरे साथ एकांत में चलिए, दो घोड़े मंगाओ, एक पर वो बैठा और एक पर राजा बैठे, एक साथ एक कार्त में गए, वहां दोनों उतरे, क्योंकि बात थी एक सेकंड में मन वश कराने की। तो कर राजा को बोला कि एक पांव लगाम में रखो, फिर वो करने बाद कहा अच्छा तन मन धन मुझे दे दो। उसने कहा तथास्तु। उसी सेकेंड परीक्षा ली, कोई के रोने की आवाज आई, कहीं कुछ हुआ, तो एक सेकंड में उसको ये संकल्प आया कि मेरे राज्य में कोई नारी रो रही है, मेरे राज्य में गरीब है कोई। तो तुरंत उसने कहा राजन जब आपने सब दे दिया तो आपका नहीं रहा, जब राज्य आपका नहीं तो आप राजा नहीं, जब आप राजा नहीं आपकी प्रजा नहीं, आपने दे दिया। तो इससे देखा जाता है दो बातें सिद्ध हो रही है कि ऐसा विकलांग होने के बावजूद भी राजा जनक जैसे का मन वश कराया, जो पढ़े लिखे विद्वान भी नहीं करा सके। दूसरी बात कि मन वश उनका कब हुआ, जब मन प्रभु के अर्पण कर दिया, मन दे दो प्रभु को दे दो तो आपके सामने सब समस्या हल।
ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प ही नहीं होता। और यदि आप ईश्वर में अपने आप को समर्पित भी कर देंगे तो मुझे लगता है कि आपका मनोबल भी इसी तरह बढ़ेगा। और आप जिस तरह से ये सेवाएं कर रहे हैं उसमें जो बाधाएं आपको आ रही हैं वो बाधाएं आप शीघ्र अतिशीघ्र दूर भी कर सकेंगे। और इसी के साथ दीदी हमारे साथ हैं आज यहाँ पर नंदिता त्रिपाठी जी, जो अपना कुछ प्रश्न आप तक पहुंचाना चाह रही हैं। मैं स्वागत करती हूँ नंदिता त्रिपाठी जी का।
ओम शांति दीदी जी, मेरा नाम नंदिता त्रिपाठी है, मैं नागपुर मुंबई उच्च न्यायालय के खंडपीठ नागपुर में एक सरकारी सहायक सरकारी वकील के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड एक डिफरेंटली एबल्ड पेरेंट्स है और हमारा एक 5 वर्षीय पुत्र है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम उसके पालन पोषण करते समय हमारे घर का माहौल हम ऐसा रखते हैं कि उसको कभी भी एहसास न हो कि उसके पेरेंट्स में कोई कमी है, पर जब वो बाहरी दुनिया में निकलता है तो उसे बार बार एहसास दिलाना या लोगों का बोलना कि नहीं तेरे माता पिता को कुछ प्रॉब्लम है और तू ऐसा मत कर वैसा मत कर, उस पर कोई विपरीत असर ना हो या कभी डिप्रेशन में ना जाए, तो इस समस्या का कैसा सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए।
आप भी स्वयं उसके मनो बल को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है। बाकी समाज का कहा जाता है कि कभी किसका मुख बंद नहीं कर सकते, परंतु जितना जितना आप स्वयं उसको मनोबल बढ़ाते रहते हो तो इसलिए वो बच्चा उस तरफ सोच भी नहीं सकेगा, क्योंकि अगर बाहर और घर दोनों तरफ से उसको कमी महसूस होती है तो वो ज्यादा वीक हो जाता है। मैं समझती हूँ बच्चा आपका ठीक होगा, जब वो ठीक है तो उसको और एक उमंग भरिए कि देखो बच्चे जो कार्य अगर हम नहीं भी कर सके हैं आप करके दिखाओ, आप आगे बढ़ो, आप अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ दो, आप बाहर की आवाजों को नहीं सुनना, क्योंकि मन पर असर तब आता है जब बाहर की आवाजों पर हम चिंतन करते हैं। तो इसलिए हम उनके आवाजों की तरफ ना जाएं, ऐसा उसके अंदर आप विशेष शक्ति भरिए और उनको भी अगर आप थोड़ा ज्ञान का टच देंगे तो उसमें ऑटोमेटिक वो शक्ति आ जाएंगी जो आवाजों को अवॉइड कर सकेगा।
मुझे लगता है कि मन की शक्ति से उस बच्चे में ये संचार करें। और हम चलते हैं दीदी अगले प्रश्न की तरफ। हमारे साथ हैं जितेश जी वैद्य और आपके प्रश्न का स्वागत है।
नमस्ते दीदी, मेरा नाम जितेश नामदेव जी वैद्य है। मैं सीए का एजुकेशन कर रहा हूँ। तो मुझे आप एक बात बताइए कि जो नॉर्मल जीवन है वो कैसा जिया जाए, जो विकलांगों के लिए इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल है वो तो सब करते हैं, पर नॉर्मल जीवन नॉर्मल व्यक्ति के साथ कैसा जिया जाए?
सबसे पहले आप अपने आप को विकलांग हूँ विकलांग हूँ विकलांग हूँ ये चिंता छोड़ दो, प्रभु चिंतन करो। शरीर की कमी को उस पर चिंतन करेंगे, चिंता करेंगे तो क्या कोई हल है? तो जिस चीज का हल नहीं उस पर सोचना ही क्यों? हाँ, इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना आगे उठ सकता हूँ, कितना सबके लिए उदाहरण बन सकता हूँ, वो हम अपना नशा रखें, वो प्लानिंग करें। क्योंकि चिंता चिंतन में समय जाता है, अपने आप को हीन समझने से हीनता बढ़ती है घटती नहीं है। या आपके अपने मन को हीन न समझ बनाए, कमजोर न बनाए, और अपनी जो विशेषता है जो कार्य कर सकते हो उस कार्य में आप आगे बढ़ो। जरूरी नहीं होता है हर कार्य में, वैसे भी हर एक बढ़ सकता हूं, जो जिसकी विशेषता उसमें बढ़ता है। ऐसे कई मिसाल जगत में हुए हैं जो विकलांग होते भी ऊंचे से ऊंचे कार्य करके दिखाए हैं। और मुझे खुशी है आप में से भी कुछ एक काफी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, खुद का भी ध्यान कर रहे हैं, दूसरों का भी रख रहे हैं। तो जहां तक पहुंच सकते हैं उस चिंतन में रह के आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्योंकि अगर हम जैसा कहा जाता है व्यक्ति सोचता है ना वैसा वो बन जाता है। एक व्यक्ति था, उसको एक कमरे में बंद गया, सोच का असर क्या पड़ता है वो हम बता रहे हैं। एक कमरे में रखा गया और दरवाजे तो छोटा ही रहता है। 8 दिन तक उसको पाठ पढ़ाया, मैं भैंस हूं बोलो, मैं भैंस हूं बोलो, मैं भैंस हूं, उसने वो रटना शुरू कर दिया। 8 दिन के अंदर इतना उसको वो पक्का हो गया क्योंकि चिंतन था। तो 8 दिन के बाद उसको कहा बाहर निकलो, कम ये दरवाजा तो छोटा है, मैं भैंस हूं, मेरे सींग इतने बड़े बड़े हैं, मैं बाहर निकलूं कैसे, जबकि उसी दरवाजे से आया था। इसका कारण हुआ चिंतन का असर। अगर विकलांग विकलांग मन में भी रख लेंगे, भले मुख से तो कोई नहीं बोलता है, बोलना भी नहीं चाहिए, परंतु अगर मन में हमारे वो बैठा हुआ है, कार्य करते भी वो आ जाता है, तो वो स्वरूप बन जाते हैं जिस हमको समाज में आगे बढ़ करके कोई क्षेत्र में कार्य करना वो नहीं कर सकेंगे।
सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। और इन्हीं सकारात्मक सोच के साथ यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि एक सामान्य जीवन जीने में हमें ज्यादा आसानी होगी। और अब हम सुनते हैं, हमारे बीच हैं हितेश सलारका जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना प्रश्न हम तक पहुंचाएं।
मैं हितेश सलारका, मैं एनएमसी में सर्विस कार्यरत हूं। मेरा प्रश्न ये था कि हम सामाजिक संतुलन के लिए देखते हुए डिस्ट्रिक्ट से जैसे पहले चर्चा हुई उस अनुसार, जैसे कि आपने कहा कि भाई समाज में अपने जीवन व्यतीत करने के लिए हमने अपना अपंगत्व भुलाना चाहिए, परंतु हम अपना अपंगत्व भुलाते हैं फिर भी समाज क्यों हमारी तुलना औरों के साथ करती रहती है। अपन सभी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं ना सामान्य लोग, कि भाई इससे तुलना नहीं करनी चाहिए अपंगों के साथ, फिर भी ऐसे करते क्यों है? इसके लिए मार्गदर्शन करे तो फिर कैसे किया जाए, कैसे रहे अपंग उनके साथ सामंजस्य करके?
सबसे पहले दुनिया का तो पहले हमने का मुख नहीं बंद कर सकते। आप अपने मन को बदल जरूर सकते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति में, कहा जाता है सामना करना है, फेस करना है। और ये भी एक हमारे सोच काम करता है। एक व्यक्ति, उसका जो है वो राइट हैंड नहीं था, सर उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, तो वो सोचता था कि उसका टेलर का काम था, तो जब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड उसका चला गया, राइट हैंड जाने पर तो लेफ्ट हैंड से उसने प्रैक्टिस की और अपने टेलर का काम शुरू रखा। जब उसने किसी व्यक्ति के लिए बोला उनको, अरे भाई भगवान ये क्या किया, कहते शुक्रिया भगवान का जो मेरा लेफ्ट हैंड तो रखा है, तो मैं कार्य तो कर सकता हूं। और दूसरे का जो व्यक्ति था उसका भी एक हाथ नहीं था, वो सारा दिन भगवान को ही कोसता था, मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों किया, परिस्थिति सेम थी, पर वो एक भगवान को दोषी ठहरा रहा था, एक भगवान का शुक्रिया मान रहा था। इसलिए आप भी लोगों की आवाज को न सुने, भगवान का सदा थैंक्स कहें। चलो एक अगर अंग में कमी है तो दूसरे अंग में वो ताकत भी भरता है जो आप सामान्य लोगों से ज्यादा उस अंग के द्वारा करते हो।
हमारे साथ हैं सोनाली एमपेडीवार, जो अपने मन की कुछ बात दीदी से करना चाहती हैं। स्वागत है।
नमस्कार दीदी, मैं सोनाली नंद कुमार एमपेडीवार हूँ, मैं बीए सेकंड ईयर में। मैं ये प्रश्न पूछती हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपंगों को दिक्कतें क्यों आती है?
वास्तव में देखा जाए दिक्कतें सबको आती है, चाहे सामान्य व्यक्ति है, चाहे अपंग है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई बैरिस्टर है, हरेक के आगे कोई ना कोई दिक्कतें है। पर हरेक को ये लगता है कि मेरे आगे ये दिक्कत क्यों आई। इसलिए ये हम ना सोचें केवल हमारे आगे दिक्कत आती है, सबको फेस करना पड़ता है। जैसे वो सब है उसमें एक हम है, फेस करेंगे तो विजयी भी तो आप ही कहलाएंगे। जो फेस करता है वो विजयी बनता है। इसलिए ये भी आप सोचे नहीं, मन को बदल दो। मन को बदलेंगे, कहा जाता है मन जीते जगत जीत बन जाएंगे।
कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और बस इसी बात को यदि हम अपने जीवन में इसको एक अब अपना लें तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा और जिंदगी जीने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें जरूर सफलता मिलेगी। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम आइए हम सुनते हैं कि यश टांडक हमारे बीच हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं।
मेरा नाम यश टांडक और मैं कल बदल और चुनने का प्रॉब्लम बहुत है और मैं बीकॉम सेकंड ईयर कर रहा हूँ और मैं कुछ प्रॉब्लम में मुझे कुछ करना है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन बांटना है, मुझे और ज्यादा बांटना है।
बहुत अच्छा प्रश्न है। और कुछ इनको आगे करने के लिए चाहा है, उसके लिए हम आपको निमंत्रण देते कि आप आइए, ज्ञान को सीखिए और उसके साथ साथ राजयोग का अभ्यास कैसे करना वो सीखना पड़ता है। राजयोग इसमें बहुत बहुत मदद कर देता है। जो योगा है, कंसंट्रेशन ईश्वर के तरफ होगा, मन उधर होगा तो हमारा भी मन कंट्रोल में हो जाएगा। तो राजयोग इसके लिए बहुत बहुत सिद्ध हुआ है, इसलिए उसका कैसे राजयोग किया जाता है उसको आप सीखे और प्रैक्टिकल उसका अभ्यास करें।
मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जरूर समाधान हुआ है। और इस राजयोग से यश चांडक जैसे, तो क्या हम एक सामान्य जनजीवन वाले जो लोग हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, राजयोग से हम भी अपना कॉन्सेंट्रेशन जरूर बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच अनंत जी ढोले हैं जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ।
दीदी नमस्ते, मैं अनंत विष्णु ढोले, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं काफी खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूँ। कभी मैंने अपने आप को इतना, एक ही हाथ अच्छा होने के बावजूद और पूरे शरीर अपंग होने के बावजूद, मुझे जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें आई उस पर मैंने हर बार विजय प्राप्त की है और बहुत खुश रहा हूँ। तो मैं तो हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन सबसे हद के अलग है कि अगर इस बात में इतनी परिस्थितियां बदलती है, विज्ञान बदलता है, सारी दुनिया में परिवर्तन ही आता है, तो अध्यात्म में हमारे लिए क्या परिवर्तन आया है?
बहुत सुंदर, उसमें भी आपकी हिम्मत, आपका वो उमंग और परमात्मा का शुक्रिया अदा करना औरों को भी जरूर वो करने के लिए प्रेरणा देगा ही। और इसमें शक्ति विशेष और अगर आध्यात्मिकता को इसके साथ जोड़ दे तो और भी बहुत आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आध्यात्मिकता हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि आगे के लिए अपने मन को एक तो कंट्रोल कैसे रखो, आध्यात्मिकता सिखाते है श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है और कैसे करो। आध्यात्मिकता में ये सिखाती है पांच विकारों को, या जो समाज के अंदर आज बुराइयां हैं, पांच विकारों के साथ साथ व्यसन है और भी कई प्रकार की बुराइयां जीवन के अंदर आ जाती हैं, मन में कई किसके बदले की भावनाएं, किसी में कुछ है, ये हर व्यक्ति के अंदर है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। तो उनको हम कैसे जीते, क्योंकि हर व्यक्ति परिवार में रहता है, समाज में रहता है, अपने कार्यक्षेत्र के अंदर रहता है। तो अगर हम इन बातों से दूर होंगे तो सबके साथ हमारा व्यवहार बहुत प्यार भरा होगा। जितना हमारा प्यार भरा सबसे व्यवहार होता है तो वहां समाज के अंदर एकता भी आ जाती है। आज दूरियां हैं, धर्म की दूरी, भाषा की दूरी, फिर और भी कई दूरियां आ चुकी हैं, दिल की दूरियां हो गई हैं, परिवार में दूरियां हो गई हैं। इसका कारण है या तो हमारे मन में कई बदले की भावना आती है, या तो किसी को नीचे गिराने की भावना आती है, ये मैं टोटल समाज की बात कर रही हूं, जिसके कारण तो आज समाज में बुराइयां हैं, समाज की बुराइयां हैं जिसके कारण कोर्ट कचहरियां पुलिस आदि हैं, जेलें हैं। पर ये सब हम एक उसको त्याग करके अच्छी राहों पर चलें, श्रेष्ठ कर्मों की ओर जाएं, चरित्रवान जीवन बनाएं, वो सिखाता है हमारे अध्यात्म। इसलिए आध्यात्मिकता को जीवन में छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी कैटेगरी का हो, किसी भी धर्म और किसी भी भाषा का हो, हर एक के लिए अत्यंत आवश्यकता है। वो जब हम खुद अनुभव करते हैं तो उसका हम लोग रियलाइज भी कर सकते कि इसकी कितनी आवश्यकता है। जैसे हम किसी ने कहा गुड़ तो मीठा है, आप कहेंगे कैसा मीठा है, तो काजे तक गुड़ खा के देख लो, क्योंकि वो अनुभव की चीज है। आंखों से गुड़ को देख रहे, मिठास को नहीं देख रहे। ऐसे आध्यात्मिक आंख से नहीं देखा जा सकता, कानों द्वारा सुन के अपने विचारों में ला करके उसका अनुभव किया जाता है। तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है, इसका भी आप अनुभव जरूर करके देखें, तो कितना लाभ है आप ही बता सकेंगे।
मुझे लगता है कि अध्यात्म की ओर हम अपने जीवन को अग्रसर करते जाएं और अपने कर्म जो हमें करने हैं उन कर्मों को करते रहें, तो हम इस जीवन में जो एडजस्टमेंट है, जो समायोजन है, वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, जो हमारे बीच हैं मिलिंद जी इंगड़े, और उनके प्रश्न का स्वागत है।
जिंदगी में एम क्या है? मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, अभी तक स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ कि मेरा एक एम क्या है, मुझे कौन सा काम पर्टिकुलर काम करना चाहिए। हर काम करता हूँ फिर उसमें अगर मुझे फेल्यूर आता है तो मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ता है, तो इसमें मुझे आध्यात्मिक मार्ग बताइए आप।
आध्यात्मिक मार्ग जैसे भी बात चल रही थी, उसके लिए थोड़ा आप समय दे। दूसरा, अपने मन को ईश्वर में लगाए तो कंफ्यूजन आपके जीवन से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें हमारी डिसीजन पावर बढ़ जाती है। केवल कहिए मत कि कंफ्यूज हूं, पर अपनी पहले योग्यता को देखिए, वो भी आपको अंदर नहीं देखना है। जब अपनी योग्यता को देखते जाएंगे तो जो योग्यता हो, जो कार्य क्षमता हो, उस ओर डिसाइड करके उस ओर बढ़ जाइए, तो आपको सफलता सहज मिलेगी।
आज हमारे बीच जितने भी सज्जन व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके प्रश्नों का समाधान दीदी के मार्गदर्शन से उन्हें हुआ होगा, और साथ ही में जो दर्शक मित्र हमारे आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें भी बहुत कुछ जानकारी आज के इस कार्यक्रम से मिली होगी। समय जैसे कि हमें परमिट नहीं करता, समय हमें बता रहा है और घड़ी की सुइयां हमें ये इशारा कर रही हैं कि आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करें। दीदी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, दीदी ने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और आज मैं आप सभी को भी धन्यवाद देती हूं कि आपने अपना समय निकालकर अपने प्रश्नों के समाधान के लिए आज आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद।